परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आज का संदेश है, उसका टाइटल है जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न हो। जीवन जो परमेश्वर को प्रसन्न हो। यूहन्ना का 8वां चैप्टर, उसका 29 का वचन हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 उसका 29 में ये लिखा है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। ये जो शब्द है ये यीशु मसीह के हैं। यीशु मसीह इस 8वें चैप्टर में फरीसियों से बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो पिता परमेश्वर है वो हमेशा उनके साथ है। वो कहता है कि जो मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, और वो कहता है कि उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, और वो वही काम करता है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमें भी परमेश्वर ने नहीं अकेला छोड़ा है, हमें भी अकेला नहीं छोड़ा है परमेश्वर ने, बल्कि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा भेजा है साथ में रहने के लिए, और हमें हमारे दिल के अंदर रहने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा भेज दी है। तो हम अकेले नहीं हैं, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह अकेला नहीं था, हम भी इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है। तो हमें भी जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा है कि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है, लेकिन क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि हम जो भी काम करते हैं उसे परमेश्वर प्रसन्न होता है? क्या हम कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम अक्सर ऐसे काम करते हैं जिसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। हमें परमेश्वर ने अपनी जिंदगी इस तरह से गुजारने के लिए कहा है, इस तरह से रहने के लिए कहा है, इस तरह से जीने के लिए कहा है जिसे परमेश्वर खुश रहे। पहला यूहान उसका 3 उसका 22, पहला यूहान उसका 3 चैप्टर और उसका 22 का जो वचन है उसमें ये लिखा है, बाईसवां वचन में ये लिखा है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हम फिर से पढ़ेंगे, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यानी कि जो कुछ हम करते हैं, जो उसे भाता है, जो उसे प्रसन्न है, वही हम करते हैं। लेकिन हकीकत में बहुत से हमें ऐसे प्रार्थनाएं हैं, अभी तक हमें उसका उत्तर नहीं मिला है। बहुत सारे ऐसे बंधन हैं जो नहीं टूटे हैं, बहुत सारे ऐसे दुख और तकलीफें हैं हमारे ज़िंदगी में, वो अभी तक पूरे नहीं हुए, उसका हल नहीं मिला है। क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो प्रभु को पसंद नहीं है। हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। हमें ये मालूम होना है कि एक मसीह की ज़िंदगी में ऐसे तीन शक्तिमान दुश्मन हैं जो हमेशा मसीह की ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहला ये दुनिया, दूसरा है अपना खुद शरीर, और तीसरा है शैतान। दुनिया, आपका खुद का शरीर और शैतान। पहला यूहान उसका दूसरा चैप्टर, उसका 15-17 में हम पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उससे पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाओं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। अगर हम चुनते हैं कि हम संसार से प्रेम रखें, तो हम क्या करते हैं? संसार से प्रेम रखने पर हम अपनी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, ये सब जो है वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं, ये आती है संसार की ओर से। अगर हम संसार से प्रेम रखते हैं तो इन चीज़ों का हम अपने जीवन में ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। संसार का अर्थ है जो लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ रहते हैं, इसका अर्थ है संसार। और इन ये जो संगति हैं, ऐसे जो लोग हैं जो परमेश्वर के खिलाफ हैं, परमेश्वर से बैर रखते हैं, तो इनसे हमें प्रेम या इन की जो ज़िंदगी है, लाइफस्टाइल है, इनसे हमें प्रेम नहीं रखना है। अब क्या होगा जब एक विश्वासी अपने परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय संसार से प्रेम करने लगता है, तो क्या होगा? हम देखेंगे दूसरा तिमोती, दूसरा तिमोती उसका 4 उसका 10 आयत में, क्योंकि देमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और तिसलोनिका को चला गया है। जब एक विश्वासी परमेश्वर से प्रेम करने के बजाय इस संसार से प्यार करने लगता है, तो जिस तरह से देमस, यहाँ लिखा है कि देमस ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, ये पौलुस लिखता है। वो कहता है कि देमस जो एक सेवक था परमेश्वर का, संसार से प्रेम करने लगा और परमेश्वर प्रभु की सेवाएं करना छोड़ दिया। परमेश्वर की सेवा करना छोड़ देना, ये एक चिन्ह है। हम जान सकते हैं कि इस इंसान ने परमेश्वर का प्रेम कर, परमेश्वर को प्रेम कर जो करना है उसको छोड़कर संसार से प्रेम करना शुरू किया है। याकूब का 4 उसका 4 में ये लिखा है, याकूब का 4 उसका 4, ये व्यभिचारिणियों क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। लेकिन हम सब विश्वासी हैं और हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम ऐसे लोग बने जो संसार से प्रेम करने लगे। अगर हमें ऐसे नहीं बनना तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें संसार से प्रेम से हमें दूर रखना है तो परमेश्वर पिता जो है हमारा, उसके प्रति हमारा प्यार ज़्यादा होना चाहिए। जो हम प्रार्थना में समय बिताते हैं उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना में हमें समय बिताना चाहिए, कि ये जो है हमें संसार से प्रेम करने से हमें बचा सकता है। परमेश्वर का कलाम पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, ये सब जो बातें हैं ये हमें परमेश्वर के प्रति ज़्यादा नज़दीक ला सकता है। जो दूसरा जो जो शत्रु है एक मसीह का, वो है अपने आप, अपना शरीर। अपना शरीर का मतलब है कि जो जो स्वभाव, जो गुनाह का स्वभाव जो है हमने जो आदम से हमें मिला, वो उसका अर्थ है फ्लैश यानि शरीर। गलतियों का 5 चैप्टर, गलतियों का 5 चैप्टर उसका 17वें वचन में हम पढ़ेंगे, मेरे लिए लिखा है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। जो शरीर है वो आत्मा के विरुद्ध है और जो आत्मा है शरीर के विरुद्ध। और आगे हम पढ़ेंगे 19 से 21 में ये लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चापन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमको पहले से ही कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। जो लोग इन चीज़ों को, जिस तरह से हमने आप अभी पढ़ा है, ऐसे गुनाह हैं लगातार करते हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे लोग कभी विश्वासी नहीं हो सकते, बल्कि परमेश्वर का क्रोध उन पर रहता है। एक विश्वासी में दो स्वभाव होते हैं, एक जो है जो आदम से हमें मिला, गुने का स्वभाव, और एक जो परमेश्वर हमें, जब हम परमेश्वर को हम अपनाते हैं, नए सिरे से हम पैदा होते हैं, तौबा कर लेते हैं, तब परमेश्वर हमें एक उनका स्वभाव, आत्मिक स्वभाव जो हमें प्रदान करता है, ताकि हम ये जो आत्मिक स्वभाव के ज़रिए हम परमेश्वर के लिए हम जी सकते हैं, जो हम करेंगे जो परमेश्वर को पसंद होगा। गलतियों की किताब 6 उसका 7 और 8, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी कटेगा। अगर हम अपने शरीर के अनुसार जीते हैं, अगर हम अपने शरीर को हमारे जीवन पर नियंत्रण करने देते हैं, तब हम शरीरों के जो काम हैं, शरीर के जो काम अभी हमने पढ़े, जिस तरह से व्यभिचार, गंदे काम, इन चीज़ें जो हमने पढ़े वो हम करने लगेंगे। लेकिन अगर हम आत्मा को हम नियंत्रण करने देंगे हमारे पर, तो आत्मा के जो फल हैं वो हमें हमारे ज़िंदगी में हम देख सकते हैं। हम किस तरह से हम शरीर को जो है हमारे पर हावी या नियंत्रण किस तरह से हम नहीं करने कर सकते। गलतियों की किताब 5 उसका 16 में, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। फिर से हम पढ़ेंगे, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तो हमें क्या करना है कि आत्मा के अनुसार हमें चलना है। जिस तरह से हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर के जो काम है, शरीर की जो लालसा है, वो हम पूरी नहीं कर सकेंगे। जो तीसरा जो शत्रु है एक विश्वासी का, वह है इबलीस, शैतान। शैतान के जो काम है उसके प्रति हमारा क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए, हमें किस तरह से हमें रहना है। शैतान तो हमेशा हमें मुश्किल में डालता है, तो उसके प्रति हमें किस तरह से रहना है। सबसे पहले हमें अलर्ट रहना है, हमें होशियार रहना है। बाइबल कहते हैं कि शैतान जो है एक शेर की तरह, गजरने वाला जो शेर रहता है,
वो शेर की तरह लोगों को ढूंढता रहता है कि कौन किसे वो गिराए, लेकिन हमें उसके प्रति होशियार रहना है। न केवल होशियार रहना है, हमें उसे रोकना है। किस तरह से हम रोक सकते हैं शैतान को? सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन होना है, हमें सरेंडर करना है परमेश्वर के प्रति। उसके बाद हम शैतान को रोक सकते हैं हमारी ज़िंदगी में आने के लिए। किस तरह से हम रोक सकते हैं? हम अपने जो विश्वास है, विश्वास में हम दृढ़ता से हम खड़े रहें। इस तरह से हम शैतान को रोक सकते हैं। हमें शैतान को थोड़ा सा भी जगह हमारी ज़िंदगी में नहीं देना है। थोड़ा सा भी जगह अगर हम शैतान को देते हैं तो हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा। थोड़ा सा भी जगह, इसका मतलब ये है कि हमें थोड़ा भी उसे हमारी ज़िंदगी में आने की अनुमति नहीं देना चाहिए। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा झूठ बोलना कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम अगर हम पिक्चर देखते हैं तो कोई बात नहीं, फिल्म्स देखते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम शराब पीते हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम सुस्त होते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन ये थोड़े थोड़े जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उससे अगर हम लापरवाह होंगे, शैतान को हमारे ज़िंदगी में आने की अनुमति देंगे थोड़े थोड़े चीज़ों में, तो ये जो है चीज़ें हमारी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है एक मसीह की ज़िंदगी में, कि वो आत्मा के अनुसार चले, अपनी ज़िंदगी आत्मा के अनुसार जिए। रोमियो का आठ 1-14, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था से मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सके, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की सामान्यता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं, और यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं से जिलाया तुम में बसा है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हमने पढ़ा कि हमें आत्मा की ओर से हमें चलना है, शरीर के अनुसार नहीं चलना है, आत्मा के अनुसार चलना है। आत्मा की मदद से हम जो शरीर के जो कार्य है उसको हमें मारना है ताकि हम शरीर के अनुसार चल सकें। किस तरह से हम आत्मा से भर सकते हैं अपने आप को? एफिसियों की किताब, एफिसियों 5 उसका 18 में लिखा है, इसमें लिखा है, और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण हो जाना, किस तरह से हम आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे? हम टीवी देखने से तो आत्मा से भरपूर न होंगे, हम इंटरनेट पर टाइम बिता के हम पवित्र आत्मा से नहीं भर सकते। हम टीवी में सीरियल्स ड्रामा देखने से, वक्त बिताने से पवित्र आत्मा से भर नहीं सकते। नॉवेल्स या कहानियों की किताब या आलसीपन, सो जाना इन चीज़ों से आत्मा से हम नहीं भर सकते। किस तरह से भर सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे, इफिसियों 5:18-21। और दाखरस से मतवाले न बनो क्योंकि इससे लुच्चापन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने मन से प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा व सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के आधीन रहो। अगर हम इन चीज़ें हम करते हैं तो पवित्र आत्मा से हम भर सकते हैं। आपस में भजन, स्तुति गान, आत्मिक गीत गाते रहना, अपने मन से प्रभु के सामने गाना, कीर्तन गाना, और हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहना, और एक दूसरे के अधीन रहना। अगर हम ये सब चीज़ें करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर भरपूरी से होगा, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलते रहेंगे, ज़िंदगी में हम कार्य करते रहेंगे जो परमेश्वर को प्रसन्न हो। तो पवित्र आत्मा से भरपूर होना ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो हम प्रभु यीशु, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ करता हूँ वो परमेश्वर प्रसन्न होता है, उसी तरह से हम भी कह सकते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारा पिता परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया ताकि हम आपके वचन को सुनें। प्रभु यीशु मसीह, हम भी कहना चाहते हैं कि हम जो भी कोई करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। अब यही चाहते हैं कि एक मसीह जो अपनी ज़िंदगी है वो इस तरह से गुजारे कि पिता परमेश्वर उससे प्रसन्न हो। हम आपके पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें पाक रूह पवित्र आत्मा से भरपूर भर देना प्रभु, जो गुनाह है, जिन चीज़ों से आप नफरत करते हैं, इन चीज़ों को हमें नहीं करने के लिए हमें मदद कीजिए। वचन पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें बिताने के लिए मदद कीजिए, प्रार्थना करते रहने के लिए हमें मदद कीजिए, वचन समझने के लिए, वचन स्टडी करने के लिए, एक दूसरे के साथ भजन कीर्तन आपके गीत गाते रहने के लिए हमें मदद कीजिए, ताकि पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में भरपूर हो, ताकि हम दुनिया से नहीं, संसार से नहीं, बल्कि आपसे प्यार करें और परमेश्वर आपको प्रसन्न कर सकें। आप महान है परमेश्वर, हमें मदद कीजिए ताकि हम हमेशा होशियार रहें शैतान के हर चाल से, उसे हम रोक सकें, उसे आप हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल भी जगह न दे पाए, इसके लिए हमें मदद कीजिए, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है हम आत्मा के अनुसार चला सकें, न कि शरीर के अनुसार। अब महान है ये प्रार्थना आप कबूल करेंगे, यही हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम में हम मांगते हैं। आमीन।